ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठिके कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्ट दृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रीमद् भागवतम से पाठ छठा स्कंध अध्याय 9 वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। इस अध्याय के आज 10 नंबर श्लोक है। द्रव्य भूय वरेण आप तुरीयम् जग्रीहु मलम् तासु बृहत्फेनाभ्याम् दृष्टम् तात् हरति क्षीपन्। द्रव्य भूय वरेण आपः तुरीयं जगृहुर्मलम् तासु बृहत्फेनाभ्याम् दृष्टं तत् हरति क्षिपन्। शब्दार्थ द्रव्य अन्य वस्तु है, भूय बढ़ने को, वरेण वरण से, आप जल, तुरीयम चतुर्थांश, जग्रीहु स्वीकार कर लिया, मलम पाप, तासु जल में, बृहत फेनाभ्याम बुलबुलों तथा फेन से, दृष्टम दृश्य तत् बह हरति भरता है, खीपन फेंक कर हटाकर। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद जल ने इंद्र से बदले में यह वर प्राप्त करके कि किसी अन्य वस्तु में जल मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा, पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया, इसीलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उन्हें हटाकर ही कि ये जल भरे। दोहराइए, जल ने इंद्र से बदले में यह वर प्राप्त करके कि किसी अन्य वस्तु में जल मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा। पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया, इसीलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें हटाकर के ही जल भरे। तात्पर्य, जब दूध फल के रस या अन्य किसी पदार्थ के साथ जल मिलाया जाता है तो आयतन बढ़ जाता है, और लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि उनमें से किसी की वृद्धि हुई है। इस आशीर्वाद के बदले में जल ने इंद्र के पापों का चतुर्थांश अंगीकार कर लिया। ये पाप कर्म फेन तथा बुलबुलों में दिखाई पड़ते हैं। अतः पीने के लिए जल भरते समय बुलबुले तथा फेन से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। द्रव्य भूय वरेण आप तुरीय जगृहमल तासु बृहत्फेणाभ्यं दृष्टम तत्हरति क्षिपन्। जल ने इंद्र से बदले में यह वर प्राप्त करके कि किसी अन्य वस्तु में जल मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा, पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया, इसलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें हटाकर ही जल भरे। तो ये प्रसंग में पहले आप श्रवण करके आए हैं कि किस प्रकार इंद्र ने जिसको ही स्वयं अपना पुरोहित तथा यज्ञ के यज्ञ करने के लिए आमंत्रित करके ही लाया था बृहस्पति की अनुपस्थिति में, वो कौन था? विश्वरूप है। तो विश्वरूप को वरण किया था तोष्टा के पुत्र को। अब विश्वरूप के पिताजी थे कौन? देवता। और उसकी माता जी थी हैं असुर वंश की थी, असुर कुल के थे। इसलिए जो यज्ञ करता था विश्वरूप क्या कहता था? जोर से बोलता था, आहुति जो देता था यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ में आहुति देने से देवताओं की शक्ति बढ़ता है। जिसके नाम से आहुति दी जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ता है, उसकी बल शक्ति सामर्थ्य बल जस से बढ़ता है। इसलिए देवताओं के नाम से आहुति दी जाती है, देवताओं यज्ञ से ही, यज्ञ की आहुति से जो घी वो पान करके ही उनकी शक्ति बढ़ता है। जिसके नाम से आहुति दिया जाएगा वो उसको ग्रहण करेगा। लेकिन ये विश्वरूप क्या कहता? देवताओं को भी भलाई चाहता था और पिताजी की तरफ से भी अच्छा चाहता था, माताजी की तरफ से भी। तो इसलिए जोर से जानता था कि सारे देवता बैठे हुए, यज्ञ देवता लोग नहीं करा रहे हैं। इसलिए देवताओं के नाम तो उच्चारण करके स्वाहा करता था। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय कहता था। तो छुप से फिर क्या कहता था? ओम हिरण्यकशिपु स्वाहा हिरण्यकशिपु, वो छुप के बोलता था थोड़ा सा। लेकिन ऐसे कई यज्ञ संपन्न हो गया अब तो पता नहीं चलता, बाद में आस्ते आस्ते पता लग गया किसको? इंद्र को। बोलता ये पहले मंत्र उच्चारण, फिर बाद में कुछ बोल रहा, क्या बोलता है? तो फिर देखा जब पता लगा कि ये तो हमको है, हमारे केवल कल्याण नहीं चाहता, राक्षसों को भी कल्याण चाहता है, दोनों का। तो देखा कि राक्षसों को भी यज्ञ की आहुति दे रहा है, तो इसलिए बड़े क्रोधित होकर वहीं यज्ञ स्थान पर क्या किया, इसका तीन सिर को काट दिया है। विश्वरूप का कितना सिर थे? तीन सिर किस लिए था? विश्वरूप का तीन सिर किस लिए था? एक सिर में सोमरस पान करता था, देवता लोग पान करते सोमरस है अमृत। दूसरा सिर में वो मदिरा पीता था, राक्षस मदिरा पीते हैं, देवता लोग अमृत पीते हैं। इसलिए देवताओं को अमृत भी पान करने के उसको अधिकार था और मदिरा भी पीता था, सुरापान भी करता था, और तीसरे में खाना खाता था। तो इंद्र ने इसका तीनों सिर को ही काट दिया। तो काट के स्पॉट इसका डेथ हो गया, इसका मृत्यु हो गया। हाँ मृत्यु तो हो गया, लेकिन इसलिए लेकिन वो ब्राह्मण था, इसलिए इसको ब्रह्महत्या पाप लगा। ब्रह्महत्या पाप लगने के कारण इंद्र की तेज घट गया, ब्रह्महत्या पाप उसको पीछे भागने लगा, उसको उसको कबलित करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि एक साल से घूमे, लेकिन फिर सब देव अन्य देवताओं की सलाह लेकर वो सोचा कि पाप को बांट देना चाहिए, दूसरे यदि कोई मेरे पाप ले जाएगा तो अच्छा होगा, यदि मेरे पाप को ले जाएगा मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। तो इसलिए वो अपने पापों को दूसरों को देना चाहता था, लेकिन इसमें चार व्यक्ति चारों के नाम यहाँ पर उल्लेखित किए जो राजी हो गए उसके पाप लेने के लिए। ब्रह्महत्या पाप को एक नहीं लिया, चौथा है, लेकिन तुलसी महाराणी बिना कंडीशन से ले लेता है ना। अब तुलसी की परिक्रमा करके क्या कहते हैं? जानी का नीचे ब्रह्म हत्यादि तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिण। और तुलसी की परिक्रमा करके जलदान, तुलसी महाराणी कोई कंडीशन नहीं रखता है, वरन वो कहते कि मैं तुमको क्या प्रदान करूंगी? हाँ राधा कृष्ण के चरण में प्रेम प्रदान करूंगी। यदि निष्काम हो तो तुलसी की परिक्रमा करके या मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे कंडीशन रखे, ये संसार में भौतिक दुनिया में सभी को लाभ चाहिए, कोई भी कार्य करने के लिए बोलो क्या बोलेगा? इसमें क्या फायदा है, क्या फायदा मिलेगा? सबको फायदा चाहिए, फायदा के बिना कोई कर्म करने के लिए तैयार नहीं होता है किसी प्रकार के। तो इसलिए ये जो पाप देना चाहा, पहले तीनों की चर्चा की गई है, तीनों जो पाप लिए थे चौथा वाला पानी है। पहले जो इसके पाप कौन कौन ग्रहण किया था? पृथ्वी, स्त्रियां और वृक्ष। पहले अब उसको चर्चा हो चुका है, पृथ्वी ने पाप इसी कंडीशन से स्वीकार किया, एक चौथा पाप लिया, पूरा पूरा नहीं एक चौथा। किसके लिए? कहा कि इंद्र ने कहा कि जब तुम्हारे पृथ्वी में कोई खुदाई कर या कुछ किसी कारण से भूकंप आदि के बाद दब जाएगा, पृथ्वी नीचे चले जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा, एक करेगा, लेकिन वो समय आने पर आस्ते आस्ते फिर वो भर जाएगा। इससे पृथ्वी एक चौथाई पाप इसको मैंने इंद्र की वरदान को सुनकर ले लिया। दूसरा वृक्ष ने पाप ले लिया, किसके लिए है? वृक्ष ने कहा कि उसको तुम्हारे डाल को कोई काट लेगा, ऐसे काट देगा, बस कुछ नहीं, झड़ तो तोड़ जाएगा, लेकिन फिर वहां पर नया नया उगेगा है, नया नूतन टहनिया बा डाल फिर उगने लगेगा। स्त्रियां ने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, काम वासना को चरितार्थ करने के लिए इंद्र ने कहा कि आप किसी भी स्थिति में जब तक केवल गर्भ पूरे मैंने बच्चे को हानि न हो गर्भ में, तब तक आप संभोग मैंने पुरुषों के साथ संभोग करके ही काम वासना को चरितार्थ कर सकते हो। वह कपिलदेव ने कहते हैं, वहाँ कपिलदेव देवभूति के संवाद में वहाँ कहते कि तो स्त्रियों को काम शक्ति में 9 गुना वरदान मिला है, 9 गुना अधिक पुरुषों से, 9 गुना अधिक है इनको काम शक्ति को उपभोग करने की, ये वरदान ये इंद्र ने दिया, ये लोग राजी हो गए। बाकी रह गया पानी, पानी को पूछा को बोला कि तुमको मैं दूंगा इस वरदान कि तुम किसी के साथ में मिल जाओगे, हैं तुमको मिलाने से आयतन बढ़ जाएगा, उसका परिमाण बढ़ जाएगा, हैं दूध में मिलाओ या फल का जूस में मिला दो, किसी में भी मिला दो, प्रभुपाद यहाँ पर दूध और फल का जूस का नाम लिया, जो इनमें मिला देगा तो वह उसका परिमाण सब में मिला दो, किसी में मिला दो, पानी मिला, पानी मिलाने से आयतन बढ़ जाएगा है। तो उसकी तो इसको सुनकर जौल ने बोला ठीक है, मैं किसके साथ यदि मिल जाऊंगा तो हर व्यक्ति मेरी उपयोग कर सकता, मैं किस में मिल जाऊंगा तो अच्छा है, अच्छा बात है। तो ये सोचकर वो एक चौथे पाप ले लिया। तब प्रतिक्रिया में क्या हुआ है, वृक्ष का जो पाप लिया था क्या हुआ उसमें, वृक्ष पाप लेने कारण उसमें से गेंद निकलते, रस निकलते, उसको अच्छा नहीं माना जाता, उसको खाने से शरीर की हानि होता है। और स्त्रियां अपने मासिक धर्म के रूप में इसकी प्रतिक्रिया को भोगते हैं। और ये जल क्या कहा, तो पाप ले लिया तो उसका उसमें क्या आएगा, बुदबुद फेण फेण सो आ जाएगा, फेण बुदबुद सो पानी में उठता है। इसलिए ये कहते कि अतएव तद बुदबुद बुदबुद अधिकं ब्रह्महत्या लिंगा, तो ये ब्रह्महत्या के पाप का फल के रूप में बुदबुद फेण सो आता है, इसलिए इसको अपसारयन अपहरति गुह्यात जनंग जलंग जन इति शेष है। इसलिए सामान्य मनुष्य ये बुदबुद फेण को हटाकर जल को अपने पीने के लिए व किसी कार्य में जो उपयोग करने के लिए लेना चाहिए। ये ही पाप का ही दूसरे रूप है, कौन सा, जल के ऊपर जो बुदबुद फेण से दिखाई पड़ता है यह अच्छा नहीं माना जाता है, इसको यदि आप ग्रहण करें संग्रहित करें खाओ को कभी फेण को मैं पीऊंगा तो क्या होगा, तो शरीर की नुकसान करेगा। इसलिए लोग सावधानी के साथ इसी को हटाकर ये यहाँ पर सलाह दी जाती कि फेण और फेण को पानी के ऊपर जो उगला वो उठा हुआ फेण है, साधारण पानी कहाँ पर फेण कहाँ उठता है, कौन सा पानी में ज़्यादा फेण होता है, गंदे पानी में, जहाँ गंदे पानी कहीं रुका हुआ पानी, जहाँ रुका बहुत दिन रुक गया है उस फिर उसमें सड़ जाने से पानी, फिर इसमें फैन पंख फैन पंख तो नीचे रहता ऊपर में ऐसे बुलबुले आ जाते जाते हैं, लेकिन यदि पानी जो चहर चलते रहता है उसमें फैन आता है, उसमें बुलबुला आना बहुत कम चांस रहता है, यदि आता तो जो किनारे किनारे जो पानी फिर रुक जाता साइड में हो जाता है ऐसा ही होकर फिर वहाँ देखते, लेकिन बीच में जो पानी स्वतः चलता है बहता पानी में नहीं दिखाई पड़ता है, बुलबुल फेणा ऐसे नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन उपकोषा में कहते कि यदि गंगा जल में भी कभी कभी बुद्ध बुद्ध फेणा पंकई ये सब कभी कभी गंगा जल में भी आ जाते हैं बारिश का सीजन में कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन साधु जन फिर भी उसमें स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। लेकिन पाप को लेने के लिए कोई किसी के बने पापों को लेने के लिए कोई व्यक्ति यदि इंद्रिय तृप्ति की साधन व इच्छा से पूर्ति हो जाता है व्यक्ति पाप लेने के लिए तैयार हो जाता है, हैं? लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो आपको कोई कंडीशन न देकर आपका पाप ले लेता, बिना कंडीशन में आपके सारे पाप ले लेता है। कौन है? हैं? कौन? बिना कंडीशन भाई आपको कोई शर्त न रख के आपके पाप को ग्रहण कर लेता है। कौन? तुलसी। और कौन ले लेता पाप बिना कंडीशन, बिना कोई शर्त न रखे आपका सारे पाप ले लेता और फिर भी आपके कल्याण कामना करता है? हैं? वैष्णव, जो सच्चे वैष्णव होते हैं पर दुख में दुखी होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की पार्षदों में एक वैष्णव के नाम सुने हैं, वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा जाते हो, वासुदेव दत्त की श्रीपाठ कहाँ पर है? मामगच्छी में है, विशाल बकुल के वृक्ष के पास में। वासुदेव दत्त ये ऐसे ही वैष्णव थे, मुकुंद दत्त वासुदेव दत्त तीन भाई है वो। तो वासुदेव दत्त कुछ चैतन्य महाप्रभु जो कहे कि वासुदेव दत्त कुछ वर मांगो, मैं तुम्हारी कृष्ण भक्ति में बड़ी प्रसन्न होकर कुछ भी वरदान देना चाहता हूँ, तुम जो चाहते मांग लो। तो उसने क्या मांगा? हैं? कि हे चैतन्य, हे महाप्रभु, यदि प्रकृत में आप मुझे कुछ वरदान देते हैं, वरदान देना चाहते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि वो एक ही मनुष्य का नहीं, 84 लाख जूनी में जितनी भी जीव जीव जितनी भी प्राणियां अपने पाप कर्म के कारण दुख भोग रहे हैं, ये सभी व्यक्तियों की सारे जीवात्माओं के पाप को मुझे दीजिए। इनके जितने भी पाप है, प्रारब्ध अप्रारब्ध कुट बीज आदि सारे पाप को मुझे दे दीजिए और कृपा करके ये सारे जीवात्माओं को आपके धाम में ले लीजिए, इनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त कर दीजिए। हैं? और यदि आप सोचते कि इसके प्रतिक्रिया में क्या होगा ये सारे पाप लेना, तो वो कहते कि मैं इसके लिए आप प्रलय तक नरक में रहना चाहता हूं, लेकिन आप ये दुखियों की दुख देखकर मुझे सहन नहीं हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पाता हूं, इसलिए दिन रात उसी के बारे में सोच सोच के मैं रोते रहता हूं। वैष्णव अपने के लिए नहीं रोता है, किसके लिए रोता है? बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए वैष्णव कैसे कहते हैं? पर दुखे दुखी है, वैष्णव पर दुख में देखकर सहन नहीं कर पाते। इसलिए जो वैष्णव के शरण में जाता है तो बुद्धिमान है कि नहीं, ये उनका शरण में जाने से आप बुद्धिमान है। पानी के शरण में मेरा पाप ले लो, थोड़ा तुम फायदा दूंगा, वो ले लो फायदा, ये तुमको ये फायदा मिलेगा, इसमें भौतिकवादी चिंताधारा है। क्योंकि जब तक हमारे मन में भिन्न भिन्न कामनाएं भरे रहते हैं, कामना भरे रहे तो फिर हमें ऐसे ही कर्म करना पड़ता है। कामना जब तक रहेगा हम कहीं ना, फिर पाप यदि भी दे देते लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जब तक नष्ट नहीं होगा फिर पाप करते रहेंगे। इंद्र एक ब्रह्महत्या का पाप दे दिया है लेकिन इसके बाद फिर दूसरे ब्रह्महत्या करेगा, किसको मारेगा फिर? हैं? वृत्रासुर को, फिर वो भी दूसरा ब्राह्मण है, फिर वृत्रासुर को वध करेगा। तो इसलिए पाप करने का प्रवृत्ति जब तक नष्ट नहीं होता है हम फिर पाप कर्म में बार बार लिप्त हो जाते हैं। इसलिए जो भी हम यदि भी हमारे पास द्वारा किसी प्रकार के पाप कर्म हो भी जाता है, ब्रह्म हत्या आदि भी कोई पाप हो गया, तो हमें किसके शरण में जाना चाहिए? हैं? वैष्णव की शरण में। वैष्णव तुलसी महारानी भी वैष्णव भी हैं, ये बड़े दयालु होते हैं, ये किसी भी बद्ध जीवन का बद्ध जीव के दुख को देख नहीं पाते हैं, इसलिए उनके शरण में जाने से ये हमको कुछ कंडीशन भी नहीं देते हैं, हैं? तुम्हारे पाप ले लूंगा इसलिए तो तुम मुझे मेरे क्या, लेकिन ये अवश्य आपको ये कहते कि मैं तुम्हारे पाप तो सब ले लूंगा लेकिन तुम जब कब ले लूंगा, जब भी तुम कृष्ण की भक्ति करोगे। हैं? जगाए माधा है कि सारे पाप, ये कि एक तो ब्रह्महत्या के, वो तो कितनी ब्रह्महत्या कुछ भी कितने किए थे कोई टिकना नहीं है, लेकिन फिर भी गौरांग महाप्रभु उनके सारे पाप को ले लिए हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हैं इनके समस्त पाप कर्म से मुक्त हो गए। जगाए माधाय तारसाखी जगाई मधाय, पापी तापी जत छिल हरिनामे उद्धारिल तारसाखी जगाए मधाय, ये जगाई माधाई इतने भी महापापी थे, ये कितनी ब्रह्म हत्या का इधर कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब गोरा जब नित्यानंद प्रभु इनको शरण में ले लिए, वैष्णव तो इतनी दयालु होते हैं, माधाई ने ये कूलर को फेंक कर, शराब पीने वाला कूलर को फेंक कर उनके सिर भी फोड़ दिया, खून भी निकाल, फिर भी कहते कि अरे सिर को तोड़ाता तो है, लेकिन माधाई एक बार तो बोलो, क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव आपके सभी पाप को लेने के लिए भी तैयार रहते, लेकिन आपको कहते कि आप कृष्ण की भक्ति करो, हरि नाम की उच्चारण करो है? लेकिन जब आप कोई पाप करते हैं फिर दोबारा ऐसे पाप को न कर, जब वैष्णव पाप ले लेते फिर कहते दोबारा ये पाप नहीं करना। जगाए माधाई के पाप को तो ले लिए गौरांग महाप्रभु, जो जगाए माधाई को पाप ले ली तुरंत ही कैसे बन गए वो, पूरे श्यामा सुंदर है, पूरा काला हो गया वर्ण, गौरांग वर्ण था, काले दिखने लगा, जो काला रूप काला बन गया। महाप्रभु पूछे मैं कैसे देख रहा हूँ, जगाए माधाई कहते थे कि देखो तुम्हारे पाप लेने का शरीर पर ना, क्योंकि सिखाने के लिए अद्वैत आचार्य बोलते कि तो बहुत सुंदर दिख रहा है, ये तो साक्षात कैसे देख रहा है, कृष्ण जैसे दिख रहे हैं, छुपा के रखे थे अपने स्वरूप को, स्वरूप में आ गए अब कृष्ण जैसे आप वो श्यामा सुंदर देख रहे हैं। लेकिन वो सिखाने के लिए कही कि देखे महाप्रभु ने अनुनय किया कि हे जगाई माधाई तो आप फिर दोबारा पाप नहीं करना, उनको शिष्य स्वीकार कर लिए महाप्रभु ने नित्यानंद की कृपा से, तो वो कहे कि दोबारा पाप नहीं करना, सारे पाप ले लेते फिर दोबारा पाप नहीं करना। दोबारा पाप कौन नहीं कर सकता है, जिसके मन में किसी भौतिक कामनाएं ना हो। पहले हम पाप करने के प्रवृत्ति से बचना चाहिए, जड़ को नष्ट करना चाहिए। इंद्र ये नहीं नष्ट नहीं करता, वो खाली पाप है, इंद्र कभी भोगने का इच्छा को त्याग नहीं पाता, इसलिए बार बार पाप कर्म करते रहता है। यदि आप पुराना पढ़ोगे भागवत पढ़ोगे तो देखोगे इंद्र बार बार वही काम करो फिर करें, गोवर्धन को उठाए भगवान ने उसी को देख, सारे ब्रजवासियों ने तो एक ब्राह्मण को मारा, उसको किसको मारना चाहता था वो, सारे ब्रज में जितने भी रहने वाले उसमें तो कितने ब्राह्मण थे कितने वैष्णव थे कितने आए ब्रजवासी लोगों को सभी को मार डालना चाहता था इंद्र ने, इसलिए भेजा था किसको, शंबर तक मेघ अणचास मूर्ति पवन के साथ इनको भेजा था, छोड़ तूफान बात्या करके सबको मार डालो, देखो थोड़ा सा उसके सम्मान से आंच आ गया कि उसका पूजा बंद कर दिया गया, कृष्ण कहने पर ब्रजवासी उसका पूजा बंद करके किसकी पूजा किए, गोवर्धन की पूजा किए थे। ये नहीं सोचा था अरे कितने सालों से ये लोग मेरी पूजा कर रहे थे हैं, नहीं तुरंत क्रोध आ गया, भगवान ने गोवर्धन को धारण किए 7 दिन 7 रात, उसको बताए देख मैं कौन हूँ, पता लगा इसको ये कृष्ण भगवान है, आके माफी भी मांग लिया है और ऐसा काम नहीं करूँगा। लेकिन फिर भगवान जब गए नरकासुर को वध करके पारिजात फूल, एक पारिजात फूल केवल चाहिए इसके लिए, सत्य भाव को चाहता तो था एक पारिजात फूल अपने केस में इसको सजाना चाहते, लेकिन वो कहे कि नहीं रुको, ये स्वर्गों का देवताओं के लिए उपभोग के लिए, मर्त्यवासियों के लिए नहीं, तुम तो मर्त्य में रहते पृथ्वी लोक में है, तुम्हारे लिए नहीं, मूर्ख दे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया किसके साथ, कृष्ण के साथ, एक बार देखा था कृष्ण कौन है जानता था, लेकिन फिर भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए जब तक हम पाप कर्म पाने इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त नहीं रहेंगे फिर बार बार पाप करते रहेंगे है? इसलिए मूल कैसे पाप करने का जो प्रवृत्ति इसी को जड़ से खत्म करना चाहिए, ये जब तक खत्म नहीं होगा फिर बार बार पाप करते रहेंगे। हमारे मन में भौतिक इच्छाएं भरे रहते हैं, जब भौतिक इच्छाएं भरे रहते तो फिर हम फिर उस भौतिक इच्छा तृप्ति करने के लिए फिर हम पाप कर्म करते हैं है? इसीलिए ये नहीं सोचेंगे इंद्र ने पाप को बांट दिया हम भी पाप को बांट देंगे दूसरों में, बोलेंगे मेरा पाप ले लो, कुछ करते हैं लोग जब बुढ़ा हो जाता है ज्यादा पाप को बहुत जंत्रणा भोगता है कष्ट भोगता है, लोग क्या करते दान देते हैं, दान कर है? दान देते ना बोला कर कुछ दान देते कि मेरा पाप का फल थोड़ा रिहात हो जाएगा है? वह हम वैष्णव को बनने कभी कभी बुलाते हैं खाने के लिए, बुलाना है तो वैष्णव को बुलाने से कुछ लाभ है, और हम जो तो 1000 लोगों को खिलाते हैं सोचते कि इससे मेरे पाप हैं थोड़ा रिहा तो हो जाएगा है?
लेकिन इसलिए जड़ से ही पाप करने का जो प्रवृत्ति है उसी को नष्ट करना चाहिए। छठा स्कंध में इसी प्रारंभ से अजामिल उपाख्यान में भी कहा गया था है बोले पाप तभी पाप करने का प्रवृत्ति नष्ट होते, अन्य सब क्रियाएं जितनी प्रकार के उपाय है पाप के फल को नष्ट करने का है वो सब केवल क्षणिक रिहात हमको देते। जैसे गंगा में स्नान करना, डुबकी लगा लिया गंगा में, क्या हो गया? पाप से मुक्त हो गया? ये तो शास्त्र कहता है। मुक्त होता कि नहीं पाप से? मुक्त हो जाता, लेकिन पानी से निकाल उतर के आके फिर पाप कर्म करता है। इसी को कहते कि कुंजरा शौचवत, हाथी का स्नान जैसे। जब तक पाप करने का जो प्रवृत्ति अंदर में भरा वो जड़ से नहीं खड़ गया, फिर हम बार बार पाप कर्म करते रहेंगे। इसलिए हमें इंद्र के अनुजाई ही बना, अपने हमारे आचार्य प्रामाणिक आचार्य के अनुगमन करते अनुसरण करते हुए हमें पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पाप किस लिए करता है व्यक्ति? किस लिए हम पाप करते हैं? पाप का बाप कौन है? पाप के बाप लोभ, काम क्रोध लोभ, काम कृष्ण कर्मार्पणी, क्रोध अभक्त द्वेषी जनी, लोभ साधु संगे हरि कथा। नियमित रूप से हरि कथा को श्रवण करने से, भक्तों की संगति में बैठकर हरि कीर्तन करने से ये तो फिर ये इसके प्रति लोभी होने से यही पाप के बाप है। पाप इसलिए लोभ के लिए करते। ये लोग पाप, इंद्र ने पाप किस लिए किया? किसी मार डाला इसको, ये सोचा कि मेरे इंद्र पद चल जाएगा, वो लोग शक्तिमान बन जाएंगे। कौन? राक्षस, उनके नाम से आहुति दे रहा, इसलिए वो भयभीत हो गया, सोचा कि कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो एक ब्राह्मण को वध करने का दोष को विश्वास है। उसको गुरु रूप में भी बनाया था, बृहस्पति की जगह पर उसको गुरु बनाया था, तो उसको लेकिन फिर भी उसको मार डाला। इसलिए हमारे मन में ये लाभ कुछ कोई भी कार्य करके उसका फायदा उठाना के नहीं चाहना है। और लोग कर्मकांड यज्ञ करते हैं, किस लिए करते हैं? ये कर्मकांड जब बता गया ये करने से ये मिलेगा, वो करने से हमें धन चाहिए, तो किसका पूजा करो? लक्ष्मी का पूजा करो। बाधा विघ्न से नष्ट होना, मुक्त होना तो गणेश का पूजा करो। हैं विद्यावान बड़ा प्रसिद्ध दिग्विजयी पंडित विद्वान बनना है, सरस्वती का पूजा करो। इंजीनियर बनना है, बड़ा इंजीनियर बनना है, विश्वकर्मा का पूजा करो। ऐसे बता के ऐसे करते रहते, इसीलिए करते। किस लिए करते? अनकंडीशनल नहीं, कुछ फायदा मिलेगा है, ये करने से मिलेगा, ये मिलेगा है। सब सारा दुनिया में लोग यही सोचते हैं ये करें मिलेगा, इसलिए करेंगे। जब कुछ नहीं मिलने वाला तो हम कुछ नहीं करेंगे। जो ज्ञानी लोग जानते कि अरे ये सब ठीक नहीं है, ये जो लेके भी हम करेंगे कि अच्छा है कि मोक्ष प्राप्त कर ले। ज्ञानी लोग इसलिए मुख्य के पीछे पड़ते हैं, वो कहते कि नहीं हमें मुख्य मिल जाए, हम पूरे ब्रह्म में ब्रह्म तेज में लीन हो जाएंगे बस। ये शरीर को रखेंगे नहीं, शरीर जो बार शरीर है ना, बार दोबारा शरीर नहीं चाहिए। लेकिन ये होने पर भी यदि कोई सोचता है कि मैं ज्ञान मार्ग में जाकर मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा, लेकिन ये शरीर जीवात्मा कभी ब्रह्म में एकाकार नहीं हो सकता, ये सदा अपने स्थिति को बजाय रखता है। इसलिए पतंती अध, क्षणिक कुछ टेम्पोरारी के लिए प्रवेश कर, लेकिन फिर भी वो पतित हो जाता है इस भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु संसार में फंस जाता, फिर पतित हो जाता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विशेर भांड, अमृत बलिया जे खाए नाना जोनी से ही फेरे, कदर जे भक्षण करे तारा जन्म अधपते जाए। यदि कोई इसे कर्मकांड को आश्रय करके ही कुछ फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, इसलिए वो यज्ञ आदि करते रहता है, वह कोई मुख्य कामना करने के लिए ज्ञान के अभ्यास करता है, ये सब प्रकृति में समाधान नहीं करता जीवन के सभी समस्या का। ये प्रकृति में बाहर में अमृत के प्याज जैसे देखते हैं, पर लेकिन प्रकृति में ये विष के उसके अंदर भरा रहता है, जो क्या है? विष, जहर। तो इसको खाने से हम फिर बार बार जन्म चक्र में भटकते रहते हैं 84 लाख जोनी में। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य बा जो वैष्णव होते हैं इसमें नहीं फंसते, इसी में कुछ फायदा लेकर कोई कार्य नहीं करते, हम तुम्हारे पाप ले लेंगे लेकिन इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, ऐसे ही हाँ हम कहते हैं। गुरु जब दीक्षा देता है शिष्य को, दीक्षा देकर क्या करता, उसका पाप को ग्रहण करता ना। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा के समय से आत्मसमर्पण करता तो उसके कर, लेकिन गुरु सारे पाप इसको ले लेता है उसका। उस समय दीक्षा के समय में यज्ञ को विष्णु को साक्षी रखकर इसके सारे पाप कर्म को गुरु ले लेता है, लेकिन कहता है कि दोबारा ऐसे पाप कर्म नहीं करना, चार नियम को पालन करना, नशा नहीं करना, ये चार चत्र पाप चतुर्विधम, पाप मुख्य रूप में चारों क्रिया के द्वारा होती है। नशा करने से, जुआसोटा खेलने से, मांसाहार करने से, और अवैध संग से, अवैध स्त्री अवैध पुरुष संग से, ये पाप होता है, ये चारों क्रियाओं से पाप है। इसलिए गुरु कहता है कि ठीक है तुम्हारे जितने पाप पहले किया था सारे पाप ले लिया मैं, कोई कंडीशन नहीं है लेकिन तुम दो बार बार ऐसे ही नहीं करते रहना, अब इसे प्रमिस कर दिया कि दोबारा ऐसे पाप कर्म नहीं करूंगा। जगाए माधाए ने ऐसे महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद को प्रमिस किया हम सारे और कहीं नहीं करेंगे, और कभी भी पहले बाप में जो किए थे बाप में फिर दोबारा नहीं किया, दोबारा कभी पाप कर्म नहीं किए। लेकिन हमारा प्रवृत्ति क्या है, हम गुरु को तो बल देते हैं लेकिन फिर भी पाप कर्म करते रहते तो क्या होगा, हम जगाई माधाई होते आमी से पापिष्ठ पूरी से रो किट होते आमी से, हमको सिखाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी की स्थिति ऐसा नहीं था, लेकिन हमको सिखाने के लिए जानना चाहिए हमारा स्थिति कैसे है। हम जगाई माधाई से भी अधिक पापिष्ठ है, हमारा जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्यर लेस परे रे उद्वेग दिया छी जे कत दिया छी जीवे रे क्लेश, निज सुख लागी पापे नाही डरी, निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर, दया दयाहीन स्वार्थ पर, पाप के डरता नहीं अपने स्वार्थ के लिए। हो इंद्र ने किसको मार डाला, ब्राह्मण को, गुरु अपने पुरोहित को भी मार डाला। इसलिए अपना इंद्रिय तृप्ति की भावना को जब तक हम रखेंगे हमारे मन में भौतिक इच्छा रहेगा, हम पाप करने के लिए डरते नहीं है, कोई भी पाप कर लेते हैं पाप करना। इसलिए ये पाप करने की जो प्रवृत्ति, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए हमें निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए, इसलिए जाते हैं। गुरु आपको प्रमेश कर ठीक है तुम्हारे सारे पाप ले लिया लेकिन दोबारा ऐसे पाप नहीं करना, लेकिन हमारा प्रवृत्ति इसे बना हुआ फिर हम पाप करते हैं, चार रेगुलरी प्रिंसिपल तोड़ने का अर्थात आप फिर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। चार रेगुलरी प्रिंसिपल कौन कौन फॉलो कर रहे हैं, हाथ उठाओ, कितने लोग पूरे फोर रेगुलरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, सभी फॉलो कर रहे हैं ना, गुरु को प्रवेश किया ना दिखे के समय, चार रेगुलरी प्रिंसिपल में फॉलो करूंगा है ना। फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, कैसे फिर गुरु तो एक बार ले लिया पाप, लेकिन पाप सब लेके फिर बोला कि फिर यार पाप नहीं करने, पाप करने के जो मुख्य आश्रय है, आश्रय जो है चार से बचना है, लेकिन हम फिर पाप करते रहते हैं, कैसे करते हैं, आप नशा थोड़ी करते हैं, नशा करते हैं अपन छोड़ दिया, कोई ऐसे एक दो कोई भक्त ऐसा होता थोड़ा उसका पहले से खई नहीं खाने का अभ्यास रहता थोड़ा खई वो छोड़ते नहीं, अब जब है भक्त तो सब छोड़ देते, कोई लोग कहते जिसको खई नहीं खाने का अभ्यास है ना छोड़ेगा नहीं वो आसान से। मैं देखा, मैं किसी लोग को भक्त बनाया था, भक्त रहता था, अभी वो लोग को 20 साल भी हो गया लेकिन वो खई नहीं खाना नहीं, सब करता है भगवान के नाम जपता है सब कुछ, लेकिन ये नहीं छोड़ेगा इतने आसान से, है खई नहीं खाना, तमाखू है शराब नशा करने की प्रवृत्ति है, ये छूटता नहीं है, बहुत ज्यादा है, ड्रग्स हम लेते हैं कभी कभी है, ऐसे मेडिसिन के नाम से भी ड्रग्स लेते हैं, चलो कोई अस्वस्थ हो गया ज़्यादा हो गया लेकिन फिर वो हैबिट बना लेते स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए है, नशा नहीं करना, जुआ सटा नहीं खेलना, लेकिन सादा सा सादे से तो कभी कभी देखते हैं कि हम भक्त होते हुए पर भी शेयर मार्केट में खेलते हैं, शेयर मार्केट में पैसा के लोभ में खेलते हैं, तो वो क्या है, सटा है ना, जुआ भी है, वो भी जुआ है, है? ये भी जुआ है, पैसे मैंने सट्टा शेयर मार्केट में खेलना है, लैपटॉप खोल के बस है? हाँ, यही भी सट्टा है, नशा नशा नहीं करना, सट्टा नहीं खेलना, और मांसाहार है, आमिष नहीं, आमिष भक्षण। लेकिन विशेष रूप में बंगाल में उड़ीसा में इनको मछली छोड़ना बड़ा कठिन होता है, मांस खाना तो छोड़ देंगे। मायापुर में एक बार मैं सेविंग हो रहा था, नाई ने जो सेविंग कर रहा था वो भी तिलक लगा रखा, कंठी भी है, बोले हमको भाई मैं जानते हैं बंगाल के लोग मछली खाते हैं। मैं पूछा आप तो बड़े वैष्णव हो, बोला हाँ हाँ हम वैष्णव हैं, हमारे घर में सब वैष्णव है। मैंने अच्छा आप मछली खाते हो, बोला गोसाई अटा तो जले रे फल, मछली अटा जले रे। हाँ सर, इसलिए कभी कभी हम ऐसा ही कर देते हैं, वेजिटेरियन सो वेजिटेबल माने जो अंडा, अंडे को भी वेजिटेबल वेजिटेरियन सो है, कोई जगह पर मिल जाए। जैसे कभी कभी ऐसे ही प्याज और सुना, अरे क्या है गार्लिक टनिक पी लो, कफ हो रहा है ना, गार्लिक नहीं खाना है, रसून नहीं खाना, प्याज नहीं, लेकिन नहीं उसका रस को पी सकते मेडिसिन तरफ। मैं देखा कई बड़े बड़े कई मशरूम लोग क्या करते, गार्लिक टनिक पीते हैं, गार्लिक टनिक ऑनियन का रस, हाँ तो इससे हम नियम तोड़ते हैं, हैं कि गार्लिक और ऑनियन का जो रस है वो राक्षस के, दो राक्षसों के खून खून से बना हुआ है, जो है बड़ा कहानी, उसको नहीं बोलता मैं। तो इसलिए कभी कभी तोड़ते हैं, और सबसे जो कठिन है अवैध संग, हाँ चाहे दैहिक रूप में हम छोड़ दिए हैं, कोई संग नहीं कर, लेकिन मानसिक स्तर पर होते रहता है, हैं? इसी के लिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप में सारे बाबा जी को चैलेंज किया था, हैं? जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने नित्रेला में प्रवेश किए, उनके शरीर को लेकर कौन समाधि देगा, झगड़े लग गए बाबा जी लोग सब। वो बाबा जी बोला मैं लोगा, मेरा सब सोचे कि ये तो सिद्ध बाबा के रूप में पूरे दुनिया में इनकी ख्याति है, जिसके आश्रम में इनकी समाधि रहेगा तो लोग हजारों लोग आएंगे इनके दर्शन करने, परिक्रमा करेंगे, सब दक्षिणा मिलेगा ज्यादा है, इसी लोभ में सभी लोग इसी लोभ में चाहते थे गुरु के साथ अमर है। लेकिन भक्ति ठाकुर कहे कि तुम लोग कोई शिष्य का अधिकार है गुरु के सब में शरीर को लेकर समाधि देना, मैं इनके एकमात्र शिष्य हूँ है। लेकिन वो लोग बोले अरे तू किसे शिष्य है, तू खाली सापण नहीं ब्रह्मचारी है, तू वो भी क्या, तुझे बाबा जी दीक्षा भी नहीं हुआ कुछ नहीं, तू कैसा हो गया। तो उसको उनके बोले ठीक है आप लोग परमहंस हो बाबा जी हो, तो मेरे चैलेंज को सुनो, एक साल के अंदर में यदि कोई अवैध संग से मुक्त है, केवल दैहिक के दैहिक रूप में नहीं मानसिक स्तर पर, यदि किसी स्त्री का कोई चिंतन करके विकार नहीं आया, तो फिर इस मेरे परमहंस गुरुदेव हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शरीर को उठा के ले सकते। सारे बाबा जी एक दूसरे को देखे लेकिन कोई आया, छः महीना के अंदर में यदि किसके मन में विकार नहीं हुआ, आओ तीन महीने एक महीना 15 दिन हैं, एक सप्ताह 3 दिन लास्ट नाइट, कोई बाबा जी नहीं है, सब अपने आप देख देख चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने चैलेंज दे रहे थे माता गंगा और महाप्रभु के नाम पर। भक्तिशोष ठाकुर अपने गुरु महाराज के शरीर को उठाकर लेके चले गए, सब देखते रहे हैं। ये बड़े कठिन है मानसिक स्तर पर इसको हटाना, अवैध स्त्री संघ की चिंतन को है, विकार आता है कोई रास्ता में जाता है, कोई सुंदर स्त्री देखने से ही है, मोहिनी मूर्ति के मोहिनी को देखकर, मोहिनी रूप को देखकर सारे देवता देवता लोग मोहित हो गए, भागे उनके पीछे हैं, मुहे शंकर जी स्वयं भागे भगवान मोहिनी। तो ये होता है मन में विकार आना, लेकिन इससे भी बचना चाहिए। हम सोचा रहे ये कलयुग में, कुछ लोग कहते कलयुग में तो ऐसा वरदान है कि जो साक्षात दैहिक अब पाप नहीं करेंगे तब तक हमको उसका भोगना नहीं पड़ेगा है? ऐसे मन में आने से उसका पाप नहीं काउंट नहीं होता, मन में यदि पुण्य चिंतन करता वो काउंट हो जाता। लेकिन यदि माइंड से हम ऐसे बुरे चिंतन को हटाएंगे नहीं, तो फिर थिंकिंग विलिंग फिर एक्टिंग, हाँ थिंकिंग चिंतन करते करते फिर आस्ते आस्ते कभी ना कभी मन इतनी दुष्ट है आपको कभी कभी उसमें प्रभुत्व कर देता है, थिंकिंग विलिंग फिर एक्टिंग स्तर पर आ जाता है। इसलिए हमें इस पाप से बचना चाहिए, अंतकरण से जड़ से ही पाप करने की प्रवृत्ति को उठाना। सबसे बड़ा शत्रु यही है। भगवान गीता में तीसरे अध्याय के अंत में कहते कि यही शत्रु महाबाहो काम रूप सुदुष्कर्म है। ये काम रूपी जो लास्ट लस्टी डिजायर है, तो ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, और कोई शत्रु नहीं है। हमारे मन में ये जो डिजायर को त्यागना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आवृत ज्ञान में तेना ज्ञानी ना नित्य वैणा काम रूपेण कौनते दुष्कुरेण लेने चाहिए। ये काम रूपी शत्रु बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी हरण कर लेता है। इसलिए हमें बचना चाहिए इन शत्रुओं को, पाप करने की प्रवृत्ति से बचना, जड़ से ही पाप करने इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। और सदा क्या चाहना जपना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पुणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। नारद मुनि इसको पालन किए, पालन करते धर्म में अपने जीवन में, इसलिए नारद मुनि की ख्याति सर्वत्र है। आज इंद्र तो ऐसे कर नहीं पाते, अन्य देवता कोई ऐसे नारद मुनि जैसे नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए इंद्र को संपूर्ण रूप में भौतिक इच्छा से मुक्त नहीं होने के कारण ये बार बार पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कौन? इंद्र ने। लेकिन नारद मुनि की जो अनुसरण करेगा, नारद मुनि निष्काम है, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत है। जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं व मुक्ति भी चाहते हैं, ये सब अशांत में रहते हैं, क्योंकि ये बार बार पाप कर्म करके पाप की प्रतिक्रिया को है, संतुलित रहते हैं, सदा मन इनके संतुलित रहता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो निष्काम होता है, उसके मन में भौतिक इच्छाएं नहीं रहते हैं, तो सदा जगत के कल्याण चिंतन में वासुदेव दत्त की तरफ सारा जगत के कल्याण चिंतन करते हुए सदा हरे कृष्ण मंत्र की जप और कीर्तन में लगे रहते हैं। एक हरिनाम मंत्र के उच्चारण करने से इतना शक्ति उसमें है, एक नाम उच्चारण करने में, कि पूरा जिंदगी में वो व्यक्ति प्रयास करके भी इतने पाप नहीं कर सकता है। लेकिन पाप बड़े पाप अपने नाम बड़े पाप बुद्धि नहीं होना चाहिए। जान बुझ कर सोचेंगे हम ऐसे नाम करेंगे और फिर पाप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक बार जितनी पाप किया था पहले अज्ञान में, एक बार कृष्ण नाम लेने से ही गुरु से स्वीकार दीक्षा स्वीकार करके वो सारे पाप समृद्ध हो गया। लेकिन दोबारा फिर ऐसे पाप करते नहीं रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। पाप करने का प्रवृत्ति को जड़ से जब तक उखाड़ देंगे तभी हमारे जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरेर्नाम इव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। सदा इसको ध्यान याद रखना है, नहीं तो कभी कभी हम स्वाहा 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 करते सोचे कि इसमें पर है नहीं। कोई भी कार्य कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के बिना सफल नहीं होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन को शुरुआत किया है टम्स स्क्वायर पार्क अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर में, वहाँ बैठकर पेड़ के नीचे केवल ताली बजा के हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन करके ही ये आंदोलन को शुभारंभ किया। इसलिए हमें हरे कृष्ण मंत्र को चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने के साथ साथ अपराध शून्य होकर, अपराध शून्य हया लह कृष्ण निरपराधे नाम रैले पाए प्रेमधाम। हरे कृष्ण।